नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नकली दवाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। मोजाम्बिक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन BWF आर्किटिक ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और दुबई में ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग जिलों में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है।
अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई है। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई है।
प्रधानमंत्री ने नागपुर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और शिरडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में मुंबई, नाशिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुलढाणा, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ ठाणे में स्थित 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने टाटा ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किए जाने वाले भारतीय कौशल संस्थान IIS मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशभर में पारंपरिक औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद क्षेत्र में उद्यमों की स्थापना के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के 8वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग भ्रामक विज्ञापनों और नकली दवाओं को बढ़ावा देकर दूसरों को धोखा देते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में योग्य आयुर्वेदिक डॉक्टरों की जरूरत है, ताकि लोगों को अयोग्य चिकित्सकों से परामर्श न लेना पड़े।
कुछ लोग भली भली जनता का नुकसान करते हैं, भ्रामक प्रचार और झूठे दावा करते हैं। ये लोग ना केवल जनता के पैसे और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, बल्कि आयुर्वेद को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आयुर्वेदिक कॉलेजों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है।
पिछले कुछ वर्षों में देश में आयुर्वेद कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकों की उपलब्धता और बढ़ेगा।
राष्ट्रपति ने नवाचार और उद्यमिता के लिए संस्थान के इंक्यूबेशन सेंटर की सराहना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य युवा उद्यमियों की क्षमता निर्माण करना है और इसने 50 स्टार्टअप स्थापित करने में मदद की है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर शाश्वत आयुष प्रदर्शनी और आयुष औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी प्रकृति, पर्यावरण और कचरा प्रबंधन पर केंद्रित है। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी मौजूद थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला किया है। रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर 6.75% पर बनाए रखी गई है।
The policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they stand at 6.75%.
रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आर्थिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के भीतर बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति के समायोजन रुख को बदलकर तटस्थ करने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो निजी खपत और निवेश से प्रेरित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हरियाणा में सत्य, विकास और सुशासन की जीत हुई है। हरियाणा में भाजपा के लिए ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने उन्हें बधाई दी। जम्मू कश्मीर पर उन्होंने कहा कि एक दशक के इंतजार के बाद आखिरकार जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली सभी पार्टियों से भाजपा वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है और राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिन्हा ने विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को विधानसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। श्री सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर आज सुशासन, सामाजिक न्याय और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों का पालन करते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद वहां तीसरी बार सरकार बनाने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस चुनाव में कार्यभार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा थे। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। श्री नायब सिंह से दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह फैसला संसदीय बोर्ड और विधायक दल करेगा। इस बीच आज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और श्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान हरियाणा में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण को लेकर चर्चा हुई। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। यह पहली बार है कि हरियाणा की जनता ने किसी पार्टी को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी को 90 सीटों में से 48 सीटें मिली हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पार्टी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने श्री सैनी को जीत की बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होगी। श्री सैनी ने प्रधानमंत्री से मिलने पर खुशी जाहिर की।
प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके सरकार बनी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव नतीजों को अप्रत्याशित बताते हुए कहा है कि वो इसका विश्लेषण कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को कई विधानसभा क्षेत्रों से शिकायत मिल रही है और निर्वाचन आयोग को इससे अवगत कराया जाएगा। श्री गांधी ने हरियाणा के सभी लोगों को उनके समर्थन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनकी अथक मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे अधिकारों, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय और सच्चाई के लिए संघर्ष जारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। इस याचिका में स्वयं को ब्रिटिश नागरिक घोषित करने वाले राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 6 नवम्बर की तारीख तय की है। कश्मीर घाटी में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के कजवान वन क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान एक सैनिक के लापता होने की खबर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में सेना ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर कल कोकरनाग के कजवान वन क्षेत्र में सेना ने पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया, जो रात भर जारी रहा। इस बीच बड़े पैमाने पर बचाव तलाशी अभियान जारी है, विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मोजाम्बिक में नए राष्ट्रपति, सांसदों और प्रांतीय गवर्नरों के लिए चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम को मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्ताधारी मोजाम्बिक लिबरेशन फ्रंट फिलिमो चुनाव में जीत दर्ज कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में 4 उम्मीदवार शामिल हैं, जिनमें फिल्मों के डेनियल चापो, मुख्य विपक्षी दल के मोजाम्बिकन नेशनल रेसिस्टेंस के ओसुफो मोमाडे, मोजाम्बिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लुटेरो सिमांगो और स्वतंत्र उम्मीदवार विनासियो मोंडलेन शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने में भारत की असाधारण प्रगति की प्रशंसा की है। कोष के कार्यकारी निदेशक डॉ नतालिया कनम ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में महिलाओं के स्वास्थ्य और आरोग्यता में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए कोष की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। एक रिपोर्ट।
डॉक्टर नतालिया कनम ने वर्ष 2000 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु अनुपात 70% तक कम करने में भारत के शानदार प्रयासों की सराहना की। इससे देश 2030 से पहले मातृ मृत्यु अनुपात को 70% से नीचे लाने के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच गया है। इस उल्लेखनीय प्रगति में देश भर में हजारों महिलाओं, विशेष रूप से मूलभूत सुविधाओं से वंचित समुदायों से संबंधित महिलाओं की जान बचाई है। डॉक्टर नतालिया कनम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को पट्टिका और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
श्रीलंका ने घोषणा की है कि वो जिनेवा में 57वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के मसौदा प्रस्ताव 51-1 का विरोध करना जारी रखेगा। कैबिनेट प्रवक्ता और मंत्री विजिता हेराथ ने कहा कि श्रीलंका बाहरी साक्ष्य संग्रह तंत्र की शक्तियों का विस्तार करने से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ है। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन आज फिनलैंड के वंता में BWF आर्किटिक ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब उनका अगला मुकाबला ताइवान के चाउ टिएन चेन और फ्रांस के अर्नोट मर्किले के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और अन्य खेल खबरों की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
ICC महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए में आज शाम भारत अपने तीसरे मैच में श्रीलंका के साथ खेलेगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक अन्य मैच में दोपहर 3:30 बजे दक्षिण अफ्रीका का सामना स्कॉटलैंड से होगा। दोनों मैच दुबई में खेले जाएंगे। वहीं भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बांग्लादेश के साथ खेलेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारत इस श्रृंखला में 1-0 से आगे है। श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर आसान जीत दर्ज की थी। इसके अलावा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज कजाकिस्तान में होने वाली महिला टीम स्पर्धा में भारत का मुकाबला जापान से होगा। चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने अपना पहला पदक पक्का कर लिया है। कल भारत ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर इतिहास रच दिया। पुरुष टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में आज भारत का सामना कजाकिस्तान से होगा।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नकली दवाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा। मोजाम्बिक में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन BWF आर्किटिक ओपन 2024 के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और दुबई में ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।